हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतु मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्थ। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी, लीभि गतिं दात्युचितां ततोऽन्यं, किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर आजानुलंबित भुजो कनकावधातो, संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो, विश्वं भरो द्विजवरो युगधर्मपालो, वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो।
నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయామధీరయేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైతికీ పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసవి గౌర భక్తవింద హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి
గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణ కీ జై హో. పహలా స్కంద అధ్యాయ 16 శ్లోక సంఖ్య 31. ఇన్ అత్యంత హీ పవిత్ర శబ్దో కో మేరే సాథ్ సాథ్ ఉచ్చారణ కర్నే కా ప్రయాస్ కీజియే. ధరణి అర్థాత్ పృథ్వీ మహారాణి జో కి గౌ కే రూప్ మే హై వో అప్నే కష్టో కి కారణ కో బతాతే హువే ఆగే కహ రహీ హై. ఆత్మానం చాను శోచామి భవంతం చామరోత్తమం దేవాన్ పితృన్ ఋషీన్ సాధూన్ సర్వాన్ వర్ణాస్తథాశ్రమాన్ ఆత్మానం చాను శోచామి భవంతం చామరోత్తమం దేవాన్ పితృన్ ఋషీన్ సాధూన్ సర్వాన్ వర్ణాస్తథాశ్రమాన్ ఆత్మానం చాను శోచామి భవంతం చామరోత్తమం దేవాన్ పితృన్ ఋషీన్ సాధూన్ సర్వాన్ వర్ణాస్తథాశ్రమాన్. శబ్దాత్ ఆత్మానం యని స్వయం చ భీ అనుశోచామి శోక్ కర్ రహీ హూ భవంతం ఆప్ చ భీ అమర ఉత్తమం అర్థాత్ దేవతాఓ మే శ్రేష్ఠ దేవాన్ దేవతాఓ కే లియే పితృన్ పితృ లోక్ కే నివాసియో కే లియే ఋషిన్ యని ఋషియో కే లియే సాధూన్ యని సాధువో కే లియే और सर्वान यानी सभी वर्णान जातियों के लिए तथा आश्रमान यानी मानव समाज के चारों आश्रमों के लिए. अनुवाद: हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों और भगवत भक्तों तथा वर्ण आश्रम के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच कर रही हूँ. श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे. हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वैज्ञानिक वर्ण आश्रम का योगदान रहता है. यानी कि अकेले कोई मनुष्य का जो यहाँ पर है, पता, मानव जीवन को पूर्ण बनाना, मानव जीवन का एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए इन सब का सहयोग चाहिए, इन सब का कॉपरेशन योगदान रहता है. किन सब का? दूसरे मनुष्यों का, देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और पितृलोक में जो निवासी होते उनका, भगवान के भक्तों का और वैज्ञानिक वर्ण आश्रम धर्म का जो ये इन सब का योगदान रहता है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है, पूर्ण बनाया जा सकता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में अंतर है, वह वर्ण आश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है और जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है और जो धीरे धीरे उठता हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। जब ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का देव चेतना में विकास के लिए होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है, तो शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है, फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र योग्यता से ब्राह्मण बन जाता है। यह सब झूठे जन्म के दावे से होता है। जन्मना ब्राह्मण बनना प्रामाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक वाङ्मय के प्रति श्रद्धा करना आदि है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता, यहाँ तक कि रामचरितमानस के अत्यंत लोकप्रिय रचयिता द्वारा भी झूठे जन्म अधिकार को समर्थन दिया जाता है। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतएव गोरु पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु भाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम महापुराण पहला स्कंद अध्याय 16, जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार कैसे किया। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है, तो वो उस कलयुग का वध करने के लिए, उसको अपने राज्य से निकालने के लिए, पूरे अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले और दिग्विजय प्राप्त करने के बाद जब वो आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी जो इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखा था और नहीं कभी सोचा था कि मेरे राज्य में कभी ऐसा दिन देखने को मिलेगा। उन्होंने देखा एक शूद्र ने राजा के वस्त्र पहने हुए थे, ये उनको दिख रहा था खाली, और किसी को दिख नहीं रहा था। एक शूद्र ने राजा के कपड़े पहने हुए थे, जैसा कि आजकल हो रहा है। आजकल के जो क्षत्रिय हैं, जो राजा बने हुए हैं, जो प्रजा का भार उठा रहे हैं, वो वास्तव में शूद्र हैं। उनके अंदर क्षत्रिय का कोई गुण नहीं है, जैसे क्षत्रिय के अंदर जो गुण होते हैं। भगवान बताते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 43 में, शौर्यम तेजो दितिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावचम। क्षत्रियों के अंदर वीरता होती है, शक्ति होती है, संकल्प होता है, दक्षता होती है, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व करने का उनका स्वभाव होता है। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं। परंतु आजकल इस कलयुग के राजा के अंदर ना वीरता है, ना शक्ति है, ना संकल्प, ना दक्षता, और ना ही युद्ध करने की कला है उनके अंदर। ये स्वयं तो एक एसी रूम में बैठे हुए होते हैं और यहाँ तक कि जब खुद भी जाते हैं बाहर, उनको ये क्षत्रिय बनते होते इसलिए हैं, राजा इसलिए होते हैं कि प्रजा का संरक्षण करें। मगर आज के राजा को तो खुद प्रोटेक्शन चाहिए होती है। आगे गार्ड्स होते हैं, पीछे बॉडी गार्ड्स होते हैं और उसके बाद में बीच में वो राजा चल रहा होता है कि कहीं कोई मुझे मारना। पहले तो क्या होता था, जो राजा होते थे वो संरक्षण करते थे। हम सब जानते हैं महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम जब वो थे त्रेता युग में, तब जब विश्वामित्र मुनि के यहाँ पर जब राक्षस लोग बहुत ज्यादा आक्रमण करते थे, उनको यज्ञ नहीं करने देते थे, तो विश्वामित्र मुनि गए थे महाराजा दशरथ के पास और उन्हें कहा कि आपके पुत्रों को मेरे साथ भेजो ताकि जो असुर लोग हमारे हमें भक्ति करने नहीं दे रहे हैं, यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं, उनका सर्वनाश करने के लिए। तब महाराजा दशरथ ने कहा मेरा पुत्र बहुत छोटा है, मैं चलूं आपके साथ। मतलब राजा जो होते थे वो तत्पर रहते थे कि किस तरह से हमें दूसरे जीवों का प्रोटेक्शन देनी है, लेकिन कलयुग के राजाओं के अंदर वह गुण नहीं है। और यही उन्होंने देखा परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज स्वयं गए थे दिग्विजयी करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि एक शूद्र ने राजा का वस्त्र पहना हुआ है और वो गौ और बैल के जो जोड़ा था उसके पैर पर, उस पर पैर बाद प्रहार कर रहा था, उनके पैर पर प्रहार कर रहा था। चार पांव कट चुके थे बेल के, केवल एक पांव पर लड़खड़ा रहा था और गौ बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। लेकिन उस कलयुग को महाराजा परीक्षित ने केवल दंडित किया, मृत्यु दंड नहीं दिया। ये आश्चर्यमय समाचार सुनकर शौनक मुनि आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि ये कैसी बात बता रहे हो आप कि उसको केवल दंड दिया, मृत्यु दंड नहीं दिया, उसको मार क्यों नहीं डाला इतना बड़ा न्याय करने के कारण, उसको तो मार डालना चाहिए था। लेकिन यदि ये कथा कृष्ण कथा के संबंध में है, यदि ये कृष्ण कथा के संबंधित कुछ है तो भले बताइए, वरना इसमें हमें कोई रुचि नहीं है। तब परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त से भगवान की कथा जुड़ी हुई होती है, तब सूत गोस्वामी कहते हैं हाँ ये कृष्ण कथा से संबंधित है। और यही कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी बता रहे थे कि धर्म रूपी बेल जो है वो गौ से पूछ रहे हैं कि आपके कष्ट का, आपके दुख का क्या कारण है। उन्होंने अपनी ओर से, अपने अनुमान से बहुत सारे उनके दुख के कारण बताए और उसके उपरांत पृथ्वी उत्तर देने लगी। पृथ्वी ने कहा मेरे दुख का सबसे मूल कारण तो यही है कि भगवान चले गए और भगवान के जो सिम्टम्स थे, भगवान की जो उनके अंदर जो गुण थे वो भी धीरे धीरे सारे खत्म हो गए हैं। और आज वो बता रही हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी, लेकिन आज कह रही हैं आत्मानम जानु शोचामि भवंतम चामरोत्तमम ए अमरोत्तमम। अमरोत्तम मतलब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ। वास्तव में जो धर्म है ना, यमराज जो है वो देवताओं में सबसे उत्तम है। ये देवताओं में सबसे कठिन कार्य है। भगवान के दूसरे जितने भी देवता होते हैं वो स्वर्ग लोक में रहते हैं, परंतु यमराज जो है वो संयमुनिपुरी में रहते हैं और वहां पर सदैव अपराधियों को दंड देना पड़ता है उनको। ये बहुत कठिन कार्य है, परंतु क्योंकि यमराज भगवान के प्रिय भक्त हैं तो भगवान की इस आदेश को पालन करने के लिए वो वहां पर रहते हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको दंड देते हैं। ताकि वो इस दंड के द्वारा स्वच्छ हो जाए और पुनः जब पृथ्वी पर वापस जाए तो भगवान की भक्ति करें, क्योंकि उनके अपराधों का दंड उन्हें मिल जाएगा तो उनको सबक सीखने के बाद जब वापस इस दुनिया में भेजा जाएगा तब वो पुनः अपराध नहीं करेंगे। जैसे हमारे घर में अगर कोई बच्चा होता है, वो कोई गलती करता है तो माँ क्या करती है, उसको दो थप्पड़ मारती है। उस समय माँ का मन में यही इच्छा होती है कि आज अगर इसको दंड मिल जाएगा तो दोबारा से ये अपराध नहीं करेगा। तो इसीलिए भगवान ने ये यम का नियम बनाया है, यमराज भी अपराधियों को दंड देते हैं ताकि वो दोबारा से कभी भी ऐसा गलत कार्य ना करें, पृथ्वी पर जाकर वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो इसलिए पृथ्वी महारानी जो है वो धर्म रूपी बेल को अमरो उत्तमम कह रही है, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है आप। लेकिन मैं आपको क्या क्या बताऊं, किस किस दुख के बारे में बताऊं, आत्मानम चानुशोचामि, मैं तो अपने बारे में भी दुखी हूँ, मेरी क्या दशा हो गई है, कुछ नहीं रहा मेरे अंदर, कोई सौभाग्य नहीं रहा, कोई तेज नहीं रहा, कोई पराक्रम नहीं रहा, मैं अपने बारे में दुखी हूँ और भवंतम और आपके बारे में भी दुखी हूँ, आपके लिए भी मुझे दुख हो रहा है। भवंतम यानी कि आपके चारों पैर कट गए उसके लिए भी दुखी हूँ, मेरा सौभाग्य उजड़ गया उसके लिए भी दुखी हूँ। ऊपर से देवान पितरान ऋषीन साधुन, देवताओं को यज्ञ की आहुति नहीं मिल रही है, संसार में सारे जितने भी लोग हैं वो सब अब यज्ञ नहीं कर रहे हैं, देवता जो है वो यज्ञ की आहुति ना प्राप्त करने के कारण दुखी हैं, तो उनके लिए भी मैं दुखी। पितरन जो पितृ लोग हैं उनके जो कुल के दूसरे लोग हैं वो उनको पिंडदान अर्पण नहीं करते हैं, इसलिए सारे पितृ लोग दुखी हैं, क्योंकि अब कोई भी कुल परंपरा का ध्यान नहीं कर रहा है, जो कुल के नीति रस्म रिवाज थे जो लोग पिंड और पिंडदान वगैरह जो है वो लुप्त हो गया है, क्षमा। और इसी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, अर्जुन बताते हैं पहले अध्याय के श्लोक नंबर 41 में, संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकरो नरकायैव कि जो वर्ण संकर होते हैं वो नारकीय जीवन के लिए यानी अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अगर संतान जो है वो धर्म का पालन नहीं करती है तो जो दूसरे उनके पुरखे होते हैं ना वो नरक में चले जाते हैं, और ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, और क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तो आज कलयुग में क्योंकि संतान जो है वो इतनी निष्कृष हो गई है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रही है, इसलिए जो पितृ लोग हैं वो दुखी हैं, उनके लिए भी मैं दुखी हूँ। ऋषियों के लिए दुखी हूँ क्योंकि उनको सही वातावरण नहीं मिल रहा है, सही ज्ञान नहीं मिल रहा है, अनुकूल स्थिति नहीं मिल रही है। साधु लोग जो हैं, जो वास्तव में साधु हैं, उनका कभी आदर नहीं हो रहा है इस कलयुग में, जो अच्छे सच्चे जेन्युइन साधु हैं उनका आदर नहीं हो रहा है, वो भिखारियों की तरह भटकते रहते हैं, और जो पाखंडी हैं उनको सब लोग कहना दान दे रहे होते हैं, उनको इतना सारा मान सम्मान उनको प्राप्त होता है, बड़े बड़े उनके आश्रम बनते हैं, तो उन जो जीनियन साधु हैं उनके लिए दुखी हूँ। और सर्वान वर्णाश्रमान सारे वर्ण और आश्रम के लिए मैं दुखी हूँ। ये सबसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म का जो है ना यहाँ पर पूरा बताया तात्पर्य में, बहुत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म के जो लाभ हैं उनके विषय में बताया कि अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है। देखिए भक्तों, इस भौतिक जगत में पशु और मनुष्य के अंदर चार काम तो सेम है, पशु भी जीता है खाने के लिए, सोने के लिए, घर बनाता है और संतान उत्पत्ति करता है, ये चार काम तो मनुष्य भी करता है। अगर यही चार काम बगैर किसी नियम के वो कर रहा है तो तो फिर वो पशुओं की समान है। फिर पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर रह जाता है? यदि पशु भी इस तरह से अपनी इच्छा से खाते हैं, अपनी इच्छा से संभोग करते हैं, अपनी इच्छा से घर बनाते, संतान उत्पन्न करते हैं, सो जाते हैं, उनकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो अगर वही कार्य और मनुष्य भी कर रहा है और उसके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, तो फिर पशुओं और जानवरों में क्या अंतर होता है? पशु केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं, उनके पास और कोई लक्ष्य नहीं होता है। पशु को यदि आप ये कहोगे कि देखो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना जो है वो तो मूर्खता है, आपको कृष्ण प्राप्ति के लिए जीना चाहिए, तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये जो वर्णाश्रम धर्म का जो निर्माण है वो भगवान ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि जीव जब मनुष्य जन्म ले लेता है, यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है भक्तों। सारे शास्त्रों ने कह दिया कि दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसे उसको पशुओं की तरह नहीं गुजारना है। नायम देहो देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामान अहत्य विट्ट भुजान, ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्ध्याते। ये जो ऋषभ देव जो है वो अपने पुत्रों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि नायम देहो देह बाजाम निर्लोके, ये जो मनुष्य जीवन है वो कष्टान कामान आर्ट विट्ट भुजान, वो कुत्तों और सुअरों की तरह इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिलना है। यही बात प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने मित्रों से कि हे मेरे मित्रों, हे असुर बालको, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदर्थम दुर्अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है वो इसके लिए नहीं मिला है कि केवल आप भौतिक इंद्र तृप्ति करो। क्या करो? कौमार आश्रित प्राज्ञो, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, प्राज्ञो का मतलब होता है बुद्धिमान, वो तो कौमार से जब कुमार अवस्था होती है 5 साल से 10 साल तक की जो अवस्था होती है उसी समय धर्मान भागवतान इह, वो तो भागवत धर्म का पालन करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिला है, और इसकी सबसे और भी इससे बड़ी जो है वो बात क्या है? तदर्थम दुर्अर्थम, वो कभी भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म में हमें एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि गोविंदा जी बहुत सुंदर बताते हैं, कमल दल जल जीवन टल मल, ये जो कमल के ऊपर जो एक पानी की बूंद आ जाती है ना, उसका कोई भरोसा नहीं होता है कब हवा आएगी और ये गिरी इसे गिर जाएगी। उसी तरह ये जीवन जो मनुष्य जीवन है वो भी इस तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए बने तब जितना जल्दी हो सके हमें भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि जीव का कल्याण केवल कृष्ण की शरण लेने से है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण की शरण ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किया है। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 13, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, कि मैंने गुणों और कर्मों के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। ये गुण उसको क्यों मिले? गुण का मतलब होता है क्वालिटीज। आपके पिछले जन्म में जो कर्म आपने किए हैं उसके अनुसार आज आपको गुण मिलता है, सुंदरता मिलती है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है। आपने जैसे जैसे कर्म किए होंगे उसके अनुसार आपको गुण मिलते हैं, और आज आप जो कार्य कर रहे हो अपने गुणों के अनुसार कर रहे हो। इसलिए भगवान कहते गुण कर्म विभागश, गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने वर्ण और आश्रम बना। यानी आपके अंदर यदि ब्राह्मण का गुण है, ये जन्म से नहीं होता। भगवान बताते गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने वर्ण और आश्रम बनाए हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है जन्म ना शूद्र जायते, जन्म से सब लोग शुद्ध होते हैं, संस्कारा द्विज उच्चते, और जब इनको संस्कार मिलता है तो द्विज बनते हैं। वेद पठित भवेत विप्र, जब हम वेदों का पाठ करते हैं तो विप्र बन जाते हैं, और ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मण, जब ब्रह्म को जान जाते हैं, भगवान को जान जाते हैं, तब ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मण ये जो भी बने हैं वर्ण आश्रम, वो किसके अनुसार बने हैं? गुणों और कर्मों के अनुसार। ये भगवान क्यों बनाते हैं कि जैसे जैसे जीव के अंदर गुण होंगे उसके अनुसार जब वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करेगा। क्या ब्राह्मण का कर्तव्य है? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। जब ब्राह्मण की क्वालिटीज होंगी तो वो ब्राह्मण अपना कार्य करेगा। क्षत्रिय का कार्य क्या है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करेगा, बहुत अच्छे तरीके से राज्य चलाएगा, और सारी प्रजा को जो है वो इस मतलब वातावरण देगा जिसमें वो अपने कृष्ण भक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ सके। जो अच्छे अच्छे राजा होते हैं, राज्य ऋषि होते हैं, वो इस तरह से कार्य करते हैं। वैश्य अपने धर्म का अनुसार कार्य करेगा, और शूद्र इस तरह से जब वो कार्य करेंगे तो क्या होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद उनको यह रियलाइज होगा कि केवल धर्म का, क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करते रहें। भगवान बहुत सुंदर बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 45 एंड 46 में, भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य व्रतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्मनिरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्य व्रतः, अपने अपने कर्मों कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति संसिद्धिम लभते नरः, हर एक व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है, और वो कैसे प्राप्त होती है, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दन्ति तत्क्षणं। अभी वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बताते हैं। भगवान कहते हैं 46 में कि यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं इदं ततम्। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां यानी जिनसे सब कुछ आया है, वह भगवान जिनसे सब कुछ आया है, येन सर्वं इदं ततम्, उनकी पूजा करो। स्वकर्मावृत स्वकर्मणा तम ब्रह्मचर्य सिद्धिम विन्दति मानना। अगर जीव जो है अपने कर्म के द्वारा उनकी पूजा करता है, कर्म पूजा नहीं है, जो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म करते हैं वो पूजा नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ जब उस भगवान की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है, तो उसके द्वारा जो जीव है वो अपनी वास्तविक सिद्धि को प्राप्त करता है। यानी जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह से पूर्णता प्राप्त होगी, जीवन का लक्ष्य इसी तरह से प्राप्त होगा कि आप अपने गुणों और कर्मों के अनुसार कार्य करो और साथ में भगवान की भक्ति करो। वो तभी संभव है जब आप आश्रमों का पालन करते हो। आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचर्य आश्रम हर एक वर्ण के लिए है, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, उसका एक आश्रम होता है 20 साल तक, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करते हैं? शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। वो सारे ही जितने भी वर्ण के लोग हैं वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और शास्त्र में जो जीवन का लक्ष्य पड़ा होता है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। और जब 20 साल तक उन्होंने पूरा शास्त्र पढ़ लिया होता है, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं, तो वो शास्त्रों के अनुसार ही अपने गृहस्थ आश्रम को चलाते हैं। और जैसे ही उनका गृहस्थ का समय समाप्त होता है तो वानप्रस्थ में आ जाते हैं, और अंतिम स्टेज आता है संन्यास का। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे 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 वो प्रगति कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी महारानी कहती हैं कि मैं वर्ण आश्रम धर्म के समस्त जीवों के लिए, वर्ण आश्रम के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ, क्योंकि अब तो ना कोई अपने वर्ण का पालन कर रहा है और ना ही कोई अपने आश्रम का पालन कर रहा है, जिसके कारण सब लोग अधोगति को जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, अतएव मानव जीवन तथा पशु जीवन में अंतर है। वह वर्ण आश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से आरंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव के द्वारा होता है। यानी कि ऋषि लोग जो है वो अनुभव, उनका जो अनुभव होता है अपने जीवन में उन्होंने किया होता है, उसके अनुसार वो सबको बताते हैं कि भाई इस तरह से जीवन को बिताना चाहिए। जो धीरे धीरे उठता हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है, और इस तरह से मनुष्यों को अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कार्य करते 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 धीरे धीरे वो कहां तक उठता है, भगवान की भक्ति तक, कृष्ण के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसकी स्थापना तक पहुंचता है। जब ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का देव चेतना में विकास के लिए होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है। आज यही हो रहा है हमारे जीव, हमारे इस समाज में। ये जो वर्णाश्रम धर्म है वो किस लिए है कि जीव की जो पशु चेतना है कि मुझे केवल इंद्रिय तृप्ति करनी है, उससे वो मानव चेतना पर आता है। मानव चेतना क्या है कि मुझे अपने धर्म के अनुसार कार्य करना, और जब मानव चेतना के बाद देव चेतना क्या है कि मुझे अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो ये चेतना जो किस तरह से विकसित होगी जब हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्खों की प्रगति के द्वारा ये जो वर्णाश्रम धर्म है वो पूरा छिन्न कर दिया जाता है। तो शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। फिर अब प्रगति नहीं हो रही है जीवों की, जीव और भी जितने भी मनुष्य हैं वो और भी पशुओं से भी गिरते जा रहे हैं। यहां तक कहता है शास्त्र कि पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहता है। जैसे एक कबूतर को, एक परिंदे को बनाया गया है दाना चुगने के लिए, तो वो दाना ही चुगेगा, उसको आप मांस तो वो नहीं खाएगा। एक पशु गाय है, उसको घास खाने के लिए बनाया गया है, वो घास ही खाएगा, वो उसके सामने मांस रखो वो नहीं खाएगा। शेर को मांस खाने के लिए बनाया गया है, उसके सामने आप घास रखो भूखा मर जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं खाएगा। लेकिन ये मनुष्य इतना गिर गया है अपनी अपने स्तर से इतना गिर गया है कि उसके आगे मांस रखो वो भी खा जाएगा, घास रखो वो भी खा जाएगा, फल रखो वो भी खा जाएगा, दाना भी चुग जाएगा। मतलब उसको केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, उसे ये नहीं पता कि मेरे लिए ये अच्छा है या मुझे करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। उसके सामने तो आज कुछ भी आएगा, बस उसका भोग करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो गया है तो शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा ही खत्म हो गया है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वर कृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। जब वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाता ना, पहला आक्रमण यही हुआ है। और आज वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन नहीं कर रहा है। ये समझो कलयुग रूपी भयंकर विषधर सर्प का पहला ढस है, जिसके कारण सारा वर्णाश्रम धर्म का जो ढांचा है वो समाप्त हो गया है, और फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है। जो योग्य ब्राह्मण है, जो वास्तव में ब्रह्म को जानता है, उसको शूद्र कहते हैं, उसका कोई आदर नहीं होता है। और जो शूद्र अपनी अयोग्यता के कारण भी वो ब्राह्मण बन जाता है, उसकी सब मान सम्मान देते हैं। ये सब झूठे जन के दावे से होता है। ये सब जो है वो आजकल जो हो रहा है ना, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया बस ब्राह्मण है, ये सब भगवान ने इसे नहीं बताया। ये जन्म से नहीं होता है, बल्कि कर्मों के अनुसार होता है, गुणों के अनुसार होता है। लेकिन कलयुग में तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। इसे पृथ्वी महारानी बोल रही है कि मैं किस किस के बारे में दुखी हूँ, क्या क्या सुनोगे। वर्णाश्रम धर्म बिगड़ जाने के कारण मानव का जीवन बिगड़ गया है, मानव का जीवन बिगड़ गया है इसलिए ऋषियों का जीवन बिगड़ गया, पितरों का जीवन बिगड़ गया, देवताओं को कुछ यज्ञ की आहुति नहीं मिल रही है, और धर्म तो समाप्त हो गया। आपका हाल देखकर दुखी हूँ, और आपके हाल को देखकर मैं पृथ्वी जो है धर्म क्यों क्योंकि मेरे ऊपर नहीं हो रहा, इसके लिए अपनी दुर्दशा पर दुखी हूँ। इन सब अपने दुखों का कारण बताते हुए आज पृथ्वी महारानी जो है वो दुख प्रकट कर रही हैं धर्म रूपी बेल के सामने। आगे भी हम पृथ्वी के इस कलयुग के कारण पृथ्वी के ऊपर जो जो दुख आ रहे हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। श्री कृष्ण।